मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम की यात्रा शुरू हो गई है, बारात है, सीता की विदा होकर के जा रही है, पितृ ग्रह से श्वशुर ग्रह की ओर। और इस यात्रा में थोड़ा ही आगे चले हैं नेपाल से उत्तर प्रदेश की ओर, कि मार्ग में ही सामना हो जाता है राम का परशुराम से। मानव है मेरे राम, मानव इसलिए है कि तुलसीदास जी सामना कराते हैं वही जनक भवन में, और ऋषि वाल्मीकि सामना कराते हैं राम का मार्ग। शिव भक्त परशुराम अपने इष्ट शिव का धनुष भंग होने से राम को दंडित करना चाहते, भार्गव वंश के भार्गव परशुराम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण परशुराम, लेकिन उनकी प्रकृति क्रोध। पिता जमदग्नि के एक आदेश पर अपनी मां रेणुका का भी वध कर चुके हैं, फिर पिता से ही वरदान लेकर के मां को पुनर्जीवित भी किया। आवेश, क्रोध, प्रचंडता और बदले की भावना से अनपराधी पर भी आक्रमण करना परशुराम की प्रकृति है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन परशुराम उस पर आक्रमण कर सकते। परशुराम की कथाएं भी बड़ी विचित्र हैं। राम तो बाद में मिल रहे हैं परशुराम को, लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर परशुराम गए शिव से मिलने, पौराणिक कथा है आनंदनी जी। परशुराम शिव से मिलने गए कैलाश पर्वत पर, और शिव उस समय शयन में थे। गणेश जी द्वार रक्षा पर थे, परशुराम अवरोध कहां सहने वाले थे। गणेश ने जब परशुराम को रोकना चाहा कि ऋषिवर रुक जाइए थोड़ी देर, पिता विश्राम में है, नहीं माने परशुराम, और क्रोध में आकर के फरसे से गणेश के ऊपर हमला कर दिया, उसी परशु से हमला कर दिया जिसे गणेश के पिता शिव ने दिया था परशुराम। अब गणेश क्या करे, अपने पिता के दिए गए अस्त्र का अपमान भी तो नहीं कर सकते, नहीं तो बदला दे सकते थे। इसलिए गणेश ने उस परशु का वार, उस फरसे का वार अपने दांतों पर ले लिया, सभी दांत टूट गए और गणेश एक दंत हो गए। तो गणेश को एक दंत बनाने वाले कौन है, मेरे राम परशुराम। ऐसे है परशुराम, शिव से प्राप्त किया हुआ अमोघ अस्त्र परशु उनके पास है। क्षत्रियों के राजा कार्तवीर ने जब से उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया है, परशुराम क्षत्रियों के शत्रु हो गए, इतने बड़े शत्रु हो गए हैं कि परशुराम ने 21 बार धरती से क्षत्रियों का नाश किया। जब ये विनाश पूर्ण हो गया, परशुराम का जो क्षत्रिय विरोधी अभियान था, परशुराम ने अपने फरसे को उठा करके क्षीर सागर की ओर फेंका। क्षीर सागर यानी अरब सागर, इसी को पयोनिधि कहा गया, जो विष्णु का विश्राम क्षेत्र है। और जब फेंका परसा परशुराम, तो डर के मारे, डर के कारण समुद्र पीछे हट गया और जो सूखी जमीन निकल आई वेस्टर्न कोस्ट पर, परशुराम ने यह जमीन नंबूदरी ब्राह्मणों को दान में दे दी, जिन्हें रावण भी कहते हैं। और इसी भूमि पर बसा केरल। तो केरल को किसने बसा दिया? परशुराम। और जो फरसा फेंका था परशुराम ने, वो केरल में तो नहीं गिरा, वो जाके गिरा कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। ऐसे है परशुराम, ऐसे परशुराम। केरल में जो गिरा और नंबूदरी ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी परशुराम ने, इसलिए नंबूदरी ब्राह्मण केरल के श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो गए। और नंबूदरी ब्राह्मण ही थे आदि गुरु शंकराचार्य, इसलिए जो उनके मठ हैं वहां पर जो पूजा होती है आज भी रावल ब्राह्मण या नंबूदरी ब्राह्मण ही करते हैं। और भी जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं वहां नंबूदरी ब्राह्मण ही हैं। बद्रीनाथ जो शिव का, जो विष्णु का बहुत बड़ा केंद्र है और जो उसको स्थापित करने वाले शंकराचार्य जी हैं, वहां पर भी रावल ही पूजा करते हैं। आइए फिर से लौटते हैं उसी दृश्य पर, परशुराम और राम के दृश्य। परशुराम भार्गव को जब शिव धनुष भंग करने की सूचना मिलती है तो वो राम के शत्रु हो जाते, मिथिला से अयोध्या के रास्ते में घेर लेते हैं परशुराम, घेर लेते राम। परशुराम को आया देख करके दशरथ तो फिर से कांपने लगे, और प्रत्येक रथी अतिरथी महारथी जो भी सूर्यवंश का है और इस बारात के दल में सम्मिलित है, वो सभी भय से प्रकंपित हो जाते हैं और परशुराम के रूप में अपने सामने यम का साक्षात दर्शन करने लगते। अब बस एक ही रास्ता सभी को समझ में आ रहा है, दशरथ को भी और बाकी लोगों को भी, कि परशुराम से विनती की जाए, प्रार्थना की जाए, अभ्यर्थना की जाए और वो दया करके उनको छोड़। दया की जब भीख मांगी जाए तब कुछ नहीं, जब हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होती है और हम जाकर किसी से कुछ मांगते हैं तो कुछ नहीं मिलता। सूखे अथर दिखाकर मांगा किया समर्पित खारा सागर, सरिताओं ने चाल बदल दी, सूख गया मग आहे भर। सूखे अथर दिखा के किसी को पानी मांगोगे तो अगर देगा भी तो क्या देगा? सूखे अथर दिखाकर मांगा किया समर्पित खारा सागर, ले जा तू प्यासा है तो पूरा समुद्र ले जा, लेकिन समुद्र से क्या प्यास बुझती है? सूखे अथर दिखाकर मांगा किया समर्पित खारा सागर, सरिताओं ने चाल बदल दी। जब प्यासा आदमी खोज रहा है सरिता को, शुद्ध जल को पीने के लिए, तो नदियां भी अपना रास्ता बदल दी। सरिताओं ने चाल बदल दी, सूख गया मग आए भर भर। ये स्थिति होती है, इसलिए दया और कृपा की आकांक्षा करने वाला कभी भी जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे राम, अपने अंदर राम जैसी शक्ति सामर्थ्य, शक्ति भी और सामर्थ्य दोनों तुम्हारे अंदर हो तो ये सृष्टि, ये समष्टि तुम्हारी होगी और देने वालों का ढेर लग जाएगा। तुम इनकार करोगे तब भी लोग तुम्हें देंगे। दया और कृपा पर जो सृष्टि के लोग जीवित हैं वो वहीं रह जाते हैं, ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। धर्म की यही तो समस्या आ गई कि हम दया और कृपा के आकांक्षी होकर के पूजा तो करने लगे, घंटियां बजाने लगे, घंटे बजाने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं उनका अनुकरण करना हमने छोड़ दिया। मेरे राम, इसीलिए मेरे राम तुम मानव हैं और तुम भी मानव हो तो राम का अनुकरण करो। केवल पूजा पूजा करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भजन गाना है गा लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जरा सा अनुकरण करके देखो तब तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठता की ओर पहुंचेगा और बियॉन्ड एक्सीलेंस उत्कृष्टता से परे पहुंचेगा। तो सब तो कांप रहे हैं, दशरथ भी कांप रहे हैं और ऋषि वशिष्ठ भी कोई राय नहीं दे पा रहे हैं, कोई साहस नहीं कर पा रहा है कि वो सामना करे परशुराम का और युद्ध चाहने वाले को युद्ध की चुनौती दे। ये साहस किसी के अंदर नहीं, परशुराम का सामना केवल और केवल राम कर। लक्ष्मण भी करना चाहते हैं लेकिन लीडर कौन होता है जो सबसे पहले खुद आगे आता है, दूसरे को नहीं। परशुराम से स्पष्ट बताते हैं राम कि वो शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे थे, तभी पिनाक टूट गया, पिनाक का अपमान करना उनका ध्येय नहीं। परशुराम जो हैबिचुअल थे, आदि थे अपने आगे क्षत्रियों को कांपता हुआ देखने के लिए, तब जीवन का अधिकांश हिस्सा गुजर गया था क्षत्रियों को प्रकंपित करने में अपने भय से। वो जब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है, एक क्षत्रिय राजकुमार ऐसा है जो सामने खड़ा है और अपनी बात कह रहा है, तो परशुराम भी स्थिर हो जाते हैं। राम का साहस थे, आक्रामक तब अधिक प्रभावी होता है जब उसके सामने वाले में साहस की क्षमता नहीं होती। जो दबता है उसी को तो दबाया जाता है। परशुराम राम को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि उनके पास दूसरा धनुष भी है, अगर राम उसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं तो वो राम का सीधे वध नहीं करेंगे बल्कि उनसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। राम चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, निर्विकारता से चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण का शर का संधान करते हैं। एक बार जब शर का संधान हो जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। परशुराम भी यहां प्रकंपित हो जाते हैं राम से। राम परशुराम का वध नहीं करना चाहते क्योंकि राम तप श्रेष्ठता और उत्कृष्टता का आदर करना जानते हैं। राम जानते हैं कि परशुराम मूल रूप से क्रूर कर्मा नहीं है जैसे राक्षस होते। राम जानते हैं कि परशुराम के अंदर ताप बढ़ने और परिस्थितियों के कारण क्रोध का जन्म हुआ, ताप का निवारण नहीं हो पाया है परशुराम का। उसका सकारात्मक सृजन में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए परशुराम में क्रोध की विसंगति आ जाती आ गई। राम कहते हैं परशुराम से कि वो अपने बाण से उनका शरीरांत नहीं करे, मारेंगे नहीं, वध नहीं करेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लेना है। राम राम कहते हैं परशुराम से कि उनके अंदर, परशुराम के अंदर विभिन्न तपों से जो ताप पैदा हुआ है उसको राम इस बाण से नष्ट कर देंगे, जिससे कि परशुराम अपना जीवन साधना और समाधि में बिता सके। विध्वंसक शक्ति के समापन का ये उचित मार्ग है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर की जो विध्वंसात्मक शक्ति होती है, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्शन होता है, उसे अगर समाप्त कर दिया जाए या संरचना में उसका परिवर्तन कर दिया जाए तो सृष्टि और समष्टि का भला होता है, नहीं तो उससे क्रूरता। अतः ऐसी शक्ति का विलोपन व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाता है। परशुराम को शांत कर दिया है राम ने और अयोध्या की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
कही जय जय जय, कही जय जय जय, रघुकुल के तू, कही जय जय जय, रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हे तू, भृगुपति गए बनहि तप हे तू, कहि जय जय जय,
मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पहुंच गए हैं अयोध्या, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों अपनी नई पत्नियों को लेकर के पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? अयोध्या पहुंचे। स्वागत सत्कार सब शुरू हो गया है। जो कनक भवन है अयोध्या का, वो मुंह दिखाई में दिया था सीता को कैकेयी ने, जिसका जीर्णोद्धार कराया अहिल्याबाई होलकर ने, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। अयोध्या पहुंच गए हैं, राम उत्सव चल रहे हैं, शुभ उत्सव चल रहे हैं। लेकिन राम तो राम है, राम है राम, ये राम है, लेकिन रमण नहीं करते। हां, ये बहुत सतर्क राम है, आध्यात्मिक रूप से बहुत सतर्क है। मिथिला से जब आए हैं, जब से आए हैं राम अयोध्या में, नेपाल से यूपी के अयोध्या में, राम कुछ अलग सा अनुभव कर रहे हैं, और इस अनुभव करने में विशेष बात है कि राम देख रहे हैं कि राजा दशरथ उनके पिता बहुत व्याकुल है, और अचानक राजा दशरथ अपनी परिषद को बुलाते हैं, उसका आह्वान करते हैं, और राम के राज तिलक का प्रस्ताव अपनी परिषद से अनुमोदित करा करके अगले ही दिन राज तिलक की घोषणा कर दी। सतर्क राम देखते हैं, सचेतन राम देखते हैं कि राज तिलक के दिन के लिए मुहूर्त का भी कोई विश्लेषण राजा दशरथ ने नहीं किया। कुलगुरु और महामात्य ऋषि वशिष्ठ से भी किसी दिन को तय करने का आग्रह नहीं किया है। राज तिलक के लिए भरत शत्रुघ्न और उसके उनके मामा को अयोध्या आने का समय भी नहीं देते हैं और न ही विदेहराज जनक को आमंत्रित करते हैं। जनक का आमंत्रित होना तो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके ही दामाद का तो राज तिलक होने जा रहा था राम, लेकिन उन्हें भी सूचना नहीं भेजी है। राजा दशरथ ने राम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राम देख रहे हैं कि राजा दशरथ ने राम के नाना भानुमंत को भी नहीं बुलाया है जो दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ रायपुर के राजा थे, उनको भी नहीं। राम को अपने बारे में चल रही राज दरबार की बैठक और वहां हुए निर्णय की सूचना मित्रों से लगातार मिल रही। राम का एक मित्र इस मामले में बड़ा प्रवीण है, सूचनाएं देने के मामले में भद्र नाम है उसका, वो बराबर आके बता रहा है भद्र। राम को तो उनके राजतिलक की औपचारिक सूचना राजा दशरथ से बाद में मिली। राम ये भी परिलक्षित कर रहे हैं कि पिता दशरथ राम के राजतिलक की प्रथम सूचना कैकेयी के महल में जाकर के देते हैं, कौशल्या को आकर के पहले नहीं बताते। कौशल्या को यह समाचार बाद में दिया जाता है। राम अपनी अंतश्चेतना से प्राप्त सतर्कता से आगे की स्थितियों के लिए अपने को तैयार करना शुरू कर दे और थोड़े ही समय में सुमंत की सूचना पर सुमंत आकर के सूचना देते हैं राम को कि कैकेयी मां ने तुम्हें बुलाया है और प्रस्तुत हो जाते हैं राम जाकर के कैकेयी के भवन में जहां पर राजा दशरथ भी व्याकुल अवस्था में मौजूद है। कैकेयी के मुंह से अपने बारे में निर्णय सुनते हैं राम और तत्काल वन गमन का निर्णय भी ले लेते हैं। कैकेयी ने बड़ी तैयारी कर रखी है पहले से, वलकल वस्त्रों के सेट बनवा करके पहले से रख लिए अपने महल में। जो पेड़ की छाल होती है उसे वलकल कहते हैं, तपस्वी और वनवासी इसी के वस्त्र पहनते थे, वो तैयार रखे हैं। राम न स्वयं कोई प्रश्न करते हैं और न ही दूसरों को प्रश्न का अवसर देते। इस समय राम की आध्यात्मिक सतर्कता अपनी चरम अवस्था में, राम को बहुत कुछ मालूम। राम को पिता दशरथ के वे कमजोर क्षण और उनके उस वचन की रक्षा करनी है जो राजा दशरथ और कैकेयी और कैकेयी के पिता केवल तीन को मालूम। राम को जिस व्यक्ति से ये सूचना मिली थी वो भी अप्रत्यक्ष नहीं। राम को बड़ा भय है कि अगर उन्होंने इनकार किया या तर्क वितर्क हुआ या किसी और ने अगर तर्क वितर्क किया तो कहीं कैकेयी आवेश में आकर के वो सूचना, वो गोपनीय सूचना सार्वजनिक न कर दें जिससे कि उनके पिता की जो प्रतिष्ठा है उसे बड़ी हानि। ये रघुकुल है, ये एक श्वाक उसे प्रारंभ हुआ, रघुकुल है। इसमें राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए हैं सतयुग में, इसलिए बड़ी प्रतिष्ठा है वचन की और वचनबद्धता की। राम नहीं चाहते कि ये प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ जाए। दशरथ की प्रतिष्ठा को बचाना है राम को। राम नहीं चाहते कि ये प्रसंग सार्वजनिक हो। क्या प्रसंग सार्वजनिक हो कि राजा दशरथ जब केकय प्रदेश गए थे, केकय का मतलब वर्तमान हिमाचल का क्षेत्र, इसी को केकय कहा गया उसे, तो जब केकय गए थे और कैकेयी पर मोहित हो गए थे और केकय नरेश तैयार नहीं थे विवाह के लिए, तो दशरथ ने यह वचन दिया था कि केकई का पुत्र ही उनका वारिस होगा और दशरथ के बाद वही राजा होगा। लेकिन ये वचन तो दे दिया था, विवाह भी हो गया, केकई अयोध्या भी आ गई, लेकिन राजा दशरथ केकई से विवाहित होने के बाद से ही कैकेयी से उनका मन विचलित होने लगा था, क्योंकि कैकेयी का मन समर्पित नहीं था। कैकेयी का आकर्षण दशरथ को उसकी ओर खींचता था, क्योंकि देह सुख देने में वो प्रवीण थी, लेकिन दशरथ का मन और आत्मा कौशल्या के पास ही रहती थी। कहते थे कि भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, इसलिए चर्चा हमेशा होती है। तो दशरथ के द्वारा कैकेयी को युद्ध में दिए गए वरदान की होती है, उस कमिटमेंट की नहीं होती है जो कमिटमेंट उन्होंने किया था कैकेयी के पिता के साथ। इसलिए राजा दशरथ इतने व्याकुल हैं राज्याभिषेक के लिए और आतुर भी हैं कि उनका अभीष्ट बिना विघ्न के पूरा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। सीता और लक्ष्मण को वनवास के लिए तैयार देखकर राम ने उन्हें समझाना चाहा। राम ने निर्णय कर लिया था कि ठीक है, जैसी आज्ञा है वैसा ही ठीक है, और वो वनवास के लिए तैयार हैं। सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो गए हैं। दोनों की त्वरा देखकर राम भी उन्हें वन ले चलने के लिए सहमत हो गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अब प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या से वनवास के लिए। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
सजीवन साजू समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचे। बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।